नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस जी। और आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। निशांत देव बैंकॉक में विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचकर पेरिस खेलों के लिए स्थान पक्का करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बनने पर सहमत। त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के महिला डबल्स सेमीफाइनल में। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिंगुल एंजेल रेस वरेला दूसरे दौर में पहुंचे। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुक्केबाजी से। निशांत देव बैंकॉक में विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंचकर पेरिस खेलों के लिए स्थान पक्का करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में निशांत ने मोल्दोवा के वासिल सेबोटोरी को 5-0 से हराया। इससे पहले महिला मुक्केबाजों निखत जरीन, प्रीत पवार और लवलीना बोरगोहाइन ने ही पेरिस ओलंपिक के लिए जगह पक्की की है। महिला वर्ग में आज अंकुशिता बोरो स्वीडन की एग्नेस एलेक्सियोंसे से 2-3 से हार गई। इसके साथ ही भारत की महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीदें भी समाप्त हो गई हैं। दूसरी ओर देखें तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गया है। सदस्यता के लिए किए गए आवेदन को बीएफआई की आम सभा ने अनुमोदित कर दिया है और अब विश्व मुक्केबाजी संघ के कार्यवाही बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह ने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी के अध्यक्ष और महासचिव बोरिस वेन डेर वोट्स से मुलाकात कर उन तौर तरीकों पर चर्चा की जिनसे भारत एशिया में विश्व मुक्केबाजी सदस्यों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है। विश्व मुक्केबाजी के अध्यक्ष ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के नजरिए से भारत काफी महत्वपूर्ण देश है और इसलिए हम विश्व मुक्केबाजी में बीएफआई को शामिल करना चाहते हैं। और अब आगे बढ़ें उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ सौमित्र बोस जी। सौमित्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार
सौमित्र जी, आज की जो मुख्य खबरें रही हैं मुक्केबाजी की रिंग से आ रही हैं जिसमें निशांत देव ने पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष मुक्केबाज, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको?
बहुत ही गुड न्यूज है
जी,
फर्स्ट मेल बॉक्सर
जी,
और भी उम्मीद है
जी।
आज ही शायद और भी दो बॉक्सर
जी जी
जो दो मैच जीतना है
जी,
अमित पंगल
जी उनका एक नाम
शायद क्वालिफाई कर सकता है
जी हाँ, क्योंकि अगर आज आप उनका ही खेल देखें, हम इनकी बात कर रहे हैं निशांत देव की, तो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता और पिछले क्वालिफायर्स में मामूली अंतर से ओलंपिक का टिकट कटाने से चूके थे और उन्होंने इस बार जो खेल खेला पूरा दबदबा बनाए रखा ऑल थ्रू द गेम।
देखिए हम जब कोई भी ओलंपिक क्वालिफायर्स में जाते हैं तो कुछ बॉक्सर्स इसको हम चुनते हैं कि ये श्योर क्वालिफाई करेंगे
जी।
मार्च में इटली में वो एक मैच के लिए चूक गए थे, आज देखिए उसका परफॉर्मेंस कितना शानदार रहा
जी।
कि ओलंपिक्स का क्वालिफायर में ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बैंकॉक में वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, वो देखिए क्वालिफाई
जी हाँ। और एक और मुक्केबाजी से जुड़ी खबर है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बीएफआई विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गया है, तो ये इस जो खबर को आप किस तरह से आंकते हैं?
देखिए ये ग्लोबल एक दुनिया का पर्सपेक्टिव देखिए, क्योंकि ये जो बॉक्सिंग जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, जब से ओलंपिक्स शुरू हुआ है तब से बॉक्सिंग इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, मगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा है। आईबीए जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी इसको मानता नहीं, इसलिए ओलंपिक्स में जब बॉक्सिंग होती है इसका एक डिफरेंट कमिटी इसको रन करते हैं। इसमें क्या होता है, बॉक्सर्स को प्रॉब्लम होती है, नेशनल फेडरेशन को प्रॉब्लम होता है। ये जो नया संस्था बना है वर्ल्ड बॉक्सिंग, इसका स्वीकृति है आईओसी से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी से, और आईओसी से स्वीकृति मिलना, रिकॉग्निशन मिलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो आईबीए है ये स्लोली स्लोली डिफंक्ट हो जाएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग, और इसलिए खास करके कि इंडियन बॉक्सर्स को ओलंपिक्स में और वर्ल्ड लेवल में काफी मेडल्स मिलने का चांसेस है, तो इसलिए बीएफआई जो है इनके साथ जुड़ा
है। क्योंकि ऐसा भी था 2028 में बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे अगर इसको इसमें शामिल ना होने पर।
इस बार भी बॉक्सिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह था
जी,
क्योंकि जहां पे भी ग्लोबल इंटरनेशनल फेडरेशन में प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम्स है, वहीं पे आईओसी उनको स्वीकृति नहीं देती।
और अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। बैडमिंटन कोर्ट से है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने किम सो योंग और कॉन्ग ही योंग की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 18-21, 21-19, 24-22 से हराया। ये स्पर्धा 1 घंटे 19 मिनट तक चली और कल सेमीफाइनल में जॉली और गोपीचंद का मुकाबला जापान की चिचारू शिदा और नामी मात्सुयामा की जोड़ी से होगा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने गायत्री और त्रिशा ने पहले सेट गंवा दिया 18-21 से, लेकिन उसके बाद फिर से कमबैक किया और वर्ल्ड नंबर सिक्स जोड़ी को
आज हराया
जी,
वर्ल्ड नंबर टू को
जी
पहले
हराया जी,
और देखिए वर्ल्ड नंबर जो फोर्थ सीड है उसको कल
खेलेंगे।
एक चीज है कि ऐसा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में फर्स्ट थिंग तो इनका पहला जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड टूर होता है ये कैटेगरीज होता है, ये सुपर 750 टूर्नामेंट 750 सिंगापुर ओपन का, और त्रिशा और गायत्री का ये करियर में फर्स्ट टाइम उसने सेमीफाइनल जो विनिंग मोमेंटम कहते हैं हम इंग्लिश में उसके साथ है। मगर एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आज जो 1 घंटा 19 मिनट का मैच चला है ये शरीर से काफी स्टैमिना और पावर ले लेती है, और कल ये केक सेम फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं ये बोल नहीं सकते
जी, क्योंकि इसमें हमारे जितने सिंगल प्लेयर्स थे, चाहे आप एचएस प्रणॉय की बात करें, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, सब हार कर बाहर हो गए, और पेरिस ओलंपिक अब खेल सकते हैं।
हाँ, अब देखिए ये इनका स्टैमिनी का टेस्ट होगा। स्किल्स लगभग जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं लगभग सेम है, जो स्टैमिना है वो मेन है, और कल उसका स्किल का टेस्ट तो होगा ही होगा मगर स्टैमिना का टेस्ट भी होंगे दोनों का।
और अब टेनिस कोर्ट का रुख करते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगुल एंजल रेयस वरेला दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में उन्होंने नीदरलैंड्स के सैम वरवीक और अमरीका के रीस टेडलर की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया, और इस समय युकी भाम्बरी और उनके जोड़ीदार फ्रांस के एल्बेनो ओलिवेटी का सामना रूस के रोमन सेफुल्लीन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी से हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। कल पहले दौर में रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबिडन का मुकाबला भारत के सुमित नागल और ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर की जोड़ी से होगा। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ चौथे दौर में पहुंच गई हैं। मिक्स डबल्स में कल भारत के रोहन बोपन्ना और उनके रूस के जोड़ीदार ल्यूडोमिला की जोड़ी का सामना रूस की वेरोनिका कुडोरोमेतोवा और इटली की एंड्रिया वावासोरी की जोड़ी से होगा। आज एक पहली खुशखबरी मिली, क्योंकि तो बारिश के कारण काफी खलल पड़ रहा है इस बार फ्रेंच ओपन में, और युकी भाम्बरी का जो मैच तो अब चल रहा है लेकिन वो पीछे चल रहे हैं इस समय, लेकिन पहले दौर में श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के उनके जोड़ीदार अगले दौर में पहुंच गए हैं।
ये अच्छी खबर है
जी,
मगर पहला दौर और दूसरा में फर्क है, क्योंकि उसको हर एक मोड़ पर उसको जीतना चाहिए। हमारा ध्यान तो बोपन्ना के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। उसका डबल्स पार्टनर कौन होगा वही मेन है, मैं इसलिए युकी अच्छा खेलना, कोई भी इंडियन प्लेयर जो भी खेलेंगे अच्छा, उसका पार्टनर चुनने में इजी होंगे
जी। और टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप का आगाज रविवार से हो रहा है। पहला मैच अमरीका और कनाडा के बीच तथा दूसरा मैच वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच होगा। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के साथ होगा। इससे पहले कल भारत बांग्लादेश के साथ अभ्यास मैच खेलने वाला है। देखा जाए तो हमारी जो भारतीय टीम है वो अभी अभी ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी आईपीएल से खेलकर अभी बाहर आए हैं और किसी की भी जो कह सकते हैं प्रतिभा को कम नहीं आंका जा सकता। आपको क्या लगता है 13 साल का सूखा खत्म होगा इस बार टी20 वर्ल्ड कप?
कुछ कह नहीं जा सकते, टी20 में कुछ भी हो सकता है। आपने आईपीएल के जिक्र किया मगर आप अगर देखिए कि आईपीएल में फाइनलिस्ट जो टीम्स है कोई भी इंडियन प्लेयर्स है ही नहीं, उसमें सिर्फ रिंकू सिंह जो स्टैंड बाई में है। मगर आईपीएल के साथ इसका कोई लेना देना तो है नहीं। देश के लिए खेलना और फ्रेंचाइजी के लिए खेलना कम्प्लीटली डिफरेंट है। मगर ये है कि जो हमारा टीम कॉम्पोजिशन है काफी स्ट्रांगेस्ट है, इसके लिए कोई दौरा नहीं है। और ये अभी देखना पड़ेगा कि टीम का स्ट्रेंथ एक चीज है, परफॉर्मेंस दूसरा चीज है। बांग्लादेश भी ये, क्योंकि जैसे हमने बार बार कहा है कि 20 ओवर का मैचेस में दी मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो बहुत ही कमती होता है। कुछ भी हो सकता है, किसी ने 10 बॉल में 40 रन बना दिया वही मैच जीत सकता है। अगर आप टीम कॉम्पोजिशन अगर देखें, इंडिया इज वेरी वेरी स्ट्रांग और ये खास करके यूएस में जो ग्राउंड्स है वो क्रिकेट के लिए नहीं बना
है
तो वो जो बना है जी तो इसके लिए जो ग्राउंड्स आर शॉर्टर मतलब छोटा, तो छोटा ग्राउंड में आप तो बहुत रन का बारिश तो जरूर होगी।
जैसे हम लोग 5S गोल कर रहे हैं हॉकी में, तो शायद देखते हैं इस बार कैसा दिलचस्प रहने वाला है टी20।
और सारा इंडिया का मैचेस न्यूयॉर्क में, ज्यादा मैचेस हैं, खास करके पाकिस्तान वाला मैच जो है 9 तारीख को जून में, वो खास करके काफी उसके ऊपर नजर, हमेशा कोई भी मान लीजिए कि टी20 वर्ल्ड कोई भी इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर काफी नजर।
और शतरंज की बिसात पर चलते हैं। ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में स्वीडन की अनुभवी ग्रैंड मास्टर पिया क्रेमलिंग को हराकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। लेकिन उनके भाई आर प्रज्ञानंदा चौथे दौर में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा से हार गए। वैशाली की क्लासिकल वर्ग में ये दूसरी जीत है और उन्होंने 2.5 अंक की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। देखा जाए तो कैंडिडेट्स में हमने वैशाली का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा था, पर इस टूर्नामेंट में काफी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
हाँ देखिए, ये चेस और गोल्फ में कुछ मिलता जुलता है। कोई भी किस दिन क्या कर लेंगे कि देखिए आज जैसा आपने कहा कि कैंडिडेट्स में इतना अच्छा नाम, अभी क्लासिकल में खेल रहे हैं, कि दोनों टूर्नामेंट का माहौल कुछ अलग अलग होता है। प्रगनंद को देख लीजिए
जी,
हमने कभी सोचा नहीं कि गुकेश कोई कैंडिडेट्स में इतना अच्छा प्रदर्शन करे,
खिताब जीत लिया।
तो ये तो होता रहता है, मगर क्लासिकल में आपको इंडियन जो टेस्ट मैचेस और टी20 जैसा है
जी। तो टूर्नामेंट में अभी 6 दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं, तो देखते हैं किसका मोहरा चलता है। और जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि पैरा निशानेबाज आमिर भट्ट पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के आमिर भट्ट भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आमिर देश के पहले पैरा निशानेबाज है जिन्होंने 2 साल से भी कम समय में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वे पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आमिर पैरालंपिक खेलों में P325 मीटर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल इस साल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में होंगे। इसमें दुनिया भर के 4000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। और बॉक्सिंग से जुड़ी भी ताजा तरीन खबर आपके पास आ रही है समय
जी। अभी खबर आई है बैंकॉक से कि अमित पंगल ने पहला मैच जीत लिया, उसका और एक मैच अगर जीत जाएंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। मगर निराश ये है कि संजीत हार गए हैं, तो उसको क्वालिफाई करना तो अभी नामुमकिन है क्योंकि दोनों को सब दो मैचेस जीतना है। तो जैसे और सचिन भी जीती है
जी,
वो 4-1 जीती है, तो सचिन और अमित पंगाल इनका चांसेस है।
चलिए अब जाते जाते मुक्केबाजी के रिंग से अच्छी खबर आपने दी सौमित्र जी, और अब समय कह रहा है अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, अब प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।